नमस्कार प्रिय श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दूसरा इतिहास नामक पुस्तक का अध्ययन विस्तार से कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आइए श्रोताओ, अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रह करके आनंदित हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम में इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके उन मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। प्रियो, मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों दूसरे इतिहास की पुस्तक, जो बाइबल की पुस्तक है, से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा दो राजाओं के बारे में, एक यहोशापात जो यहूदा का राजा था और एक आहाब जो इसराइल का राजा था, और दोनों ने संधि की, एक दुष्ट राजा और एक धर्मी राजा, और ये रामोत से लड़ने के लिए गए और हमने पाया कि आहाब ने भेष बदला परंतु वह मारा गया और इस प्रकार से मिकायाह की भविष्यवाणी उसमें पूर्ण हुई। मित्रों, जैसे कि मैंने कहा कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और दूसरे इतिहास की पुस्तक 19 अध्याय से अध्ययन आरंभ करेंगे, तो आप मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरे इतिहास की पुस्तक 19 अध्याय उसके 1 और 2 पद, जहाँ पर लिखा है, और यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट गया, तब हनानी नाम दर्शी का पुत्र एहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के वैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम क्या देखते हैं? क्या दुष्टों की सहायता करनी चाहिए? यह एक उत्तम प्रश्न है। हमारी पीढ़ी को यह सोचना चाहिए जो हर बात में सहानुभूति दर्शाने लगती है। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने ईश्वर विरोधी, उसके वैरी से प्रेम करने को नहीं कहा है। पापी से प्रेम करना एक बात है और उसके पाप से प्रेम करना एक अलग बात है। यदि पापी मन न फिराए और अपने पाप में लिप्त रहे तो मेरे प्रियो, उसका विकल्प नहीं है। परमेश्वर के बैरी और उसके वचन के बैरी हैं। वे मसीही विश्वास के चीरकालिक बैरी हैं। मित्रों, वर्षों पूर्व एक भक्त जन ने मुझसे कहा, मैं जो स्टालिन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, अस्तु मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ और न ही इसके लिए दोष स्वीकार करता हूँ। स्टालिन एक मसीही विद्यालय में पढ़ाता था जहाँ पर उसे कुछ बाइबल शिक्षा मिली थी। उसके पास परमेश्वर को जानने का अवसर था। इसके उपरांत भी वह परमेश्वर का प्रत्यक्ष बैरी बन गया था। मेरे प्रियो, मैं नहीं मानता कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें। मेरे विचार में ऐसा सहानुभूति का स्वांग परमेश्वर को सम्मानित नहीं करता है। मुझसे अनेक लोग कहते हैं कि वे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, कुछ तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, परंतु मैंने यह देखा है कि वे तो मेरे मित्र भी नहीं हैं। परमेश्वर ऐसे स्वांग को मान नहीं देता जो कहते फिरे कि वे सबसे प्रेम करते हैं, जबकि सच तो यह है कि वे बहुत ही कम मनुष्यों से प्रेम करते हैं। मेरे मित्रों, हमें परमेश्वर के जनों से प्रेम करना है, यह उसकी आज्ञा है। हमें पापी से भी प्रेम करना है, इसलिए कि वह मसीह में आ जाए और परमेश्वर को जान ले। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम पाप से समझौता कर लें और पापी जैसा करता है वैसा ही हम भी अपने व्यवहार को ढालें। जी नहीं, यह एक और अति उत्तम शिक्षा है जिसे मैं नहीं चाहता कि हम अनदेखा करें। परमेश्वर ने येहू को यहोशापात के पास उस समय नहीं भेजा जब वह आहाब और इजेबेल के पास जा रहा था। उस समय परमेश्वर ने उसे यह संदेश नहीं भेजा कि वह दुष्टों से दूर रहे। यहोशापात परमेश्वर का जन था, उससे भूल हुए। परमेश्वर ने उसे आहाब के साथ इस अनुभव से निकलने दिया, अर्थात हो करके गुजरने दिया, क्योंकि परमेश्वर उसे कुछ सिखाने जा रहा था। मेरे प्रियो, आज अनेक मनुष्य परमेश्वर के आत्मिक पुलिस हैं। वे सबको सिखाना चाहते हैं कि कैसे किसी से दूर रहें, किससे मेल मिलाप रखें और किससे न रखें। परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि संदिग्ध विषयों पर हम किसी पर उंगली न उठाएं। याद रखें कि मनुष्य हमारे समक्ष न्याय के लिए नहीं आता है। रोमियो के पत्री 14 अध्याय उसके 4 पद में पौलुस कहता है, तू कौन है जो दूसरों के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। मेरे मित्रों, हम किसी की आलोचना करने की भूल कर सकते हैं, क्योंकि वे हमारे न्याय में वैसे पृथक नहीं है जैसा उन्हें होना चाहिए। लिखा है कि परमेश्वर उसे स्थिर रख सकता है। यदि उसे प्रभु यीशु मसीह में व्यक्तिगत विश्वास है तो परमेश्वर उसे थाम लेगा। मैं इसे इस प्रकार समझता हूँ, मुझे एक दिन प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का लेखा देना होगा। वह मेरा स्वामी है, आप नहीं हैं। इसी प्रकार मैं आपका स्वामी नहीं हूँ, आपका स्वामी मसीह यीशु है। आप उसे अपना लेखा अवश्य देंगे। यह सच है कि मुझे एक दिन प्रभु यीशु को लेखा देना है। मुझे बहुत व्यस्त रखता है, मेरे पास आपका न्याय करने का तो समय ही नहीं है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपके पास भी मेरा न्याय करने का समय नहीं है। जी हाँ, यह हमारा काम नहीं है, यह प्रभु का काम है। मैं गलत करूँगा तो प्रभु मुझे झिड़केगा। यहोशापात के साथ उसने यही तो किया था। उसने इस अनुभव के द्वारा उसे शिक्षा दी और उसने सबक सीख लिया। मेरे मित्रों, यहोशापात एक ईश्वर भक्त राजा था जिसने अपने राज्य में अनेक धार्मिक सुधार किए, परंतु उसे एक भूल हुई। संभवतः उसने इसराइल और यहूदा को एक करने के लिए आहाब से समझौता किया, परंतु आहाब से धोखा खाया। यही नहीं, उसने अपने पुत्र का विवाह भी आहाब की पुत्री से कर दिया, जिसका दुष्परिणाम यहूदा को भोगना पड़ा। मित्रों, हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 19 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती है। तूने तो देश में से अशेरों को नाश किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। जी हाँ, यहोशापात तो एक असाधारण मनुष्य था, परंतु उसके पुत्र ने आहाब की पुत्री से विवाह किया, जिसका दंड उसे और उसकी प्रजा दोनों को भोगना पड़ा। दूसरे इतिहास की पुस्तक 19 अध्याय के 4 पद में हम आगे पढ़ते हैं, यहोशापात यरूशलेम में रहता था और उसने वेशेरबा से लेकर एप्रेम के पहाड़ी देश तक अपनी प्रजा में फिर दौरा करके उनको उनके पितरों के परमेश्वर यहोवा की ओर फेर दिया। जी हाँ, अब ध्यान दीजिए, अब हम यहोशापात द्वारा लाए गए धर्म सुधार को देखेंगे। वह एक अति उत्तम राजा था। दूसरे इतिहास के पुस्तक 19 अध्याय उसके 5-7 पद में पढ़ते हैं, फिर उसने यहूदा के एक एक गढ़ वाले नगर में न्यायी ठहराया और उसने न्यायियों से कहा, सोचो कि क्या करते हो, क्योंकि तुम जो न्याय करोगे वह मनुष्य के लिए नहीं यहोवा के लिए करोगे, और वह न्याय करते समय तुम्हारे साथ रहेगा। अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ कुटिलता नहीं है, और न वह किसी का पक्ष करता है और न घूस लेता है। मेरे मित्रों, एक अधर्मी मनुष्य न्याय आसन पर बैठ जाए तो वह परमेश्वर के प्रति अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझता है। वह एक खतरनाक न्यायी होता है। वह चाहे जो भी हो, वह खतरनाक इसलिए है कि वह सब बुराइयों के अधीन है। पहले तो यह कि वह गलत न्याय करेगा, वह पक्षपात भी करेगा और रिश्वत अर्थात घूस भी लेगा, जिसे आज हम संसार में देखते हैं। हम दूसरे इतिहास के पुस्तक 19 अध्याय उसके 8-9 पद में आगे पढ़ते हैं, और यरूशलेम में भी यहोशापात ने लेवियों और याजकों और इसराइल के पितरों के घराने के कुछ मुख्य पुरुषों को यहोवा की ओर से न्याय करने और मुकदमों को जांचने के लिए ठहराया, और वे यरूशलेम को लौटे, और उसने उनको आज्ञा दी कि यहोवा का भय मानकर सच्चाई और निष्कपट मन से ऐसा करना। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहोशापात ने अपने राज्य की संपूर्ण व्यवस्था परमेश्वर को केंद्र में रख करके की। मित्रों, अब हम आगे देखते हैं वैरी राष्ट्रों का आक्रमण। इसे हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 20 अध्याय उसके 1-3 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, इसके बाद मुआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसा सुनता मार तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। वह भयभीत है, वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है और अपनी प्रजा को संदेश भेजता है कि उसके साथ वे सब भी उपवास रखकर प्रार्थना करें। क्या ही उत्तम विचार है। दूसरे इतिहास की पुस्तक 20 अध्याय उसके 4-5 पद में हम पढ़ते हैं, सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर, ध्यान दीजिए यहोशापात की प्रार्थना क्या है, दूसरे इतिहास के पुस्तक 20 अध्याय 6-7 पद में यह कहने लगा कि हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं, और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता, और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इसराइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया। मेरे मित्रों, यहोशापात अब वह काम कर रहा है जो उसके पिता आसा ने नहीं किया था। आसा पूर्व काल के अनुभवों पर निर्भर नहीं रहा कि उसका विश्वास दृढ़ होता। यहोशापात जानता था कि परमेश्वर ने पूर्व काल में कैसे उपकार किए हैं और वह परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर निर्भर है। वह संपूर्ण परिस्थिति को प्रार्थना में रखता है और अंत में वह कहता है, दूसरे इतिहास की पुस्तक 20 अध्याय उसके 12-13 पद में, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता भी नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं, और सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। मेरे प्रियो, यह कैसा अद्भुत दृश्य है, कैसा राजा है। असहाय स्थिति में वह स्वयं को पूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथों में दे देता है। यह कैसी अद्भुत बात है। अब हम देखेंगे परमेश्वर का उत्तर, दूसरे इतिहास की पुस्तक 20 अध्याय के 14 पद में, तब आसाप के वंश में से यहजीएल नाम एक लेवीय, जो जकर्याह का पुत्र और बनायाह का पोता और मतन्याह के पुत्र ईएल का पर पोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। ध्यान दीजिए कि धर्मशास्त्र में भविष्यद् वक्ताओं या बाइबल में प्रकट होने वाले अन्य मनुष्यों की पहचान के लिए वंशावलियां दी गई है। यह महत्वपूर्ण है। मैं सोचता हूँ कि क्या आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वज कौन हैं? मुझे तो अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, परंतु इसराइल में वंशावलियां सुरक्षित रखी जाती थी। मेरे मित्रों, अब परमेश्वर के नबी यहजीएल का वचन सुने, दूसरे इतिहास के पुस्तक 20 अध्याय के 15 पद में, और वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। मेरे मित्रों, मुझे यह स्मरण रखना है, मेरे लिए यह भूल जाना आसान है कि परमेश्वर ने मुझे जो सेवा प्रदान की है वह प्रभु की है। मैं उसे ऐसे करता हूँ जैसे वह मेरी है। मैं बोझ उठाने लगता हूँ, समस्याओं का सामना करने लगता हूँ, कठिनाइयों की चिंता करने लगता हूँ। मुझे बार बार स्मरण करना पड़ता है कि यह परमेश्वर का काम है। मेरे प्रियो, मैं श्रद्धा पूर्वक कहता हूँ कि यदि यह उसका काम है, उसे ही समस्याओं का समाधान करना होगा। प्रार्थना का भेद यह है कि विश्वास रखकर परमेश्वर के पास आ जाएं, जैसा कि एक मसीही गीत भी है, अपने बोझ प्रभु को दो और वही छोड़ दो। जी हाँ, अपने बोझ प्रभु को दो और वही छोड़ दो। मेरी समस्या यह है कि मैं उसे उसके चरणों में नहीं छोड़ पाता हूँ। मैं अपनी समस्याएं प्रभु के सामने रखता तो हूँ, परंतु फिर उन्हें उठाकर अपने कंधों पर डाल लेता हूँ और उन्हें उठाकर चलता हूँ। मेरे मित्र, आप में से कई लोग हो सकते हैं कि इसी प्रकार के बोझ को लेकर के आप फिर रहे हैं। ओह, परमेश्वर कैसा भला है। वह कहता है, यहोशापात मत डर, यह युद्ध तेरा नहीं, तू लड़ नहीं पाएगा, यह मेरा युद्ध है। मैं अपने आप को ऐसी परिस्थिति में पाता हूँ मित्रों, जिनसे मुक्ति पाना मेरे लिए कठिन है। आप भी ऐसी परिस्थिति में रहे होंगे या हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात को आज आप जान लीजिए। वचन में लिखा है, मुझ पर डाल दे, अर्थात सारी परिस्थितियों को परमेश्वर पर डाल दे, मैं संभाल लूंगा। ओह, काश आप और मैं भी यहोशापात की नाई परमेश्वर को अपनी समस्याओं को देना सीख पाते, तो आज परमेश्वर मुझसे और आपसे भी कहता कि यह युद्ध तेरा नहीं, मेरा है। हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 20 अध्याय उसके 20 पद में पढ़ते हैं, बिहान को वे सवेरे उठकर तको के जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीत करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। मेरे प्रियो, अब वे आगे बढ़ रहे बैरी का सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं। यहोशापात अपने सेवा को साहस बांधता है कि वे परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर आपसे और मुझसे भी कह रहा है, मुझ पर विश्वास कर, मुझ पर निर्भर कर और मेरे वचन पर भरोसा रख। जी हाँ, किसी PhD की बात मत सुनो, परमेश्वर क्या कहता है उसी को सुनो कि उसका वचन क्या है। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। दूसरे इतिहास की पुस्तक 20 अध्याय के 21 पद में लिखा है, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, यह क्या ही अद्भुत दृश्य है। यह सेना विन्यास की बड़ी विचित्र विधि है। उसने एटम बम नहीं निकाले, उसने यहोवा की स्तुति के लिए गायन मंडली आगे भेजी, उसकी करुणा सदा की है। मेरे मित्रों, यह संपूर्ण अध्याय बड़ा रोमांचकारी है। अब देखिए क्या हुआ, प्रभु ने उन्हें विजयी दिलाई, परमेश्वर ने उनके लिए युद्ध जीत लिया। दूसरे इतिहास के पुस्तक 20 अध्याय के 26 पद में हम पढ़ते हैं, चौथे दिन वे बराका नाम तराई में इकट्ठे हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया, इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा जो आज तक है। ध्यान दीजिए, अनेक कलिसियाओं में यह नाम बराका रखा है। कलिसिया के लिए यह एक अच्छा नाम है। इसका अर्थ है यहोवा का धन्यवाद करने का स्थान या परमेश्वर की स्तुति का स्थान। प्रत्येक कलिसिया को बराका कलिसिया होना है। दूसरे इतिहास के पुस्तक 20 अध्याय उसके 27 से 30 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष और उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया था। सो वे सारंगियां, वीणाएं और तुरियां बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को आए, और जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इसराइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया और यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर ही है जो विश्राम और शांति प्रदान करता है। हमारे देश ने यह नहीं सीखा है। हम सोचते हैं कि यदि हम ऐसा दल बांध लें, ऐसी संधि कर लें, तो हमें युद्ध में लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हमने दो विश्व युद्ध देखे हैं या पढ़े हैं और सुने हैं, यह सोचकर कि इससे विश्व शांति स्थापित होगी, परंतु हमारे पास जो भी है वह युद्ध है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें शांति नहीं दी है। हमारा संसार शांति के राजकुमार में विश्वास नहीं करता है। यही मुख्य कारण है और यही कारण है कि संसार में आज शांति नहीं है। मेरे प्रियो, अध्याय के अंत में यहोशापात और आहाब के पुत्र के बीच व्यापारिक समझौता होता है। इसके विषय हम पहले देख चुके हैं। आहाब के अभक्त पुत्र के साथ यहोशापात के इस काम का परमेश्वर की आशीष नहीं थी। यहोशापात एक महान राजा तो था, परंतु वह सिद्ध नहीं था। परमेश्वर ने कहा, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही करता रह, जिसे हम पद 32 में देखते हैं। दूसरे इतिहास की पुस्तक 20 अध्याय उसके 33 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तो भी ऊंचे स्थान ढाए न गए, वरन अब तक प्रजा के लोगों ने अपना मन अपने पितरों के परमेश्वर की ओर न लगाया था। ध्यान दीजिए, मूर्ति पूजा अंततः राष्ट्र के पतन का कारण हुई। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 20 समाप्त होता है। अध्याय 21 और 22 में हम देखते हैं ईश्वर त्याग और पाप में गिरना। मेरे मित्रों, अब परमेश्वर के वचन का भाग हमारे सामने है। वह अनेक परिप्रेक्ष्यों में जटिल है। इसकी जटिलता का कारण है पाप, क्योंकि पाप सदा ही जटिल होता है। मैं इसका उदाहरण देता हूँ। यदि मैं आपसे कहूँ कि मेरे हाथ में एक लकड़ी है और वह सीधी है, तो आप कल्पना कर पाएंगे कि वह कैसी दिखती है, क्योंकि वह एक ही प्रकार से सीधी हो सकती है। अब यदि मैं कहूं कि मेरे हाथ में एक टेढ़ी लकड़ी है, तो आप उसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेढ़े होने में असंख्य रूप हैं। ठीक इसी प्रकार पाप अनेकों को ललचाता है, क्योंकि छलावा है। वह प्रलोभन देता है, क्योंकि वह असामान्य और विचित्र प्रतीत होता है और जटिल भी होता है। यही बात हम यहोराम के जीवन में देखेंगे। वह यहोशापात के बाद सिंहासन पर बैठता है। यहोराम का दुष्ट राज, आइए हम देखें। दूसरे इतिहास की पुस्तक 21 अध्याय उसके 1 पद लिखा है, निदान यहोशापात अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। जी हाँ, यहोराम यहोशापात का वही पुत्र है जिसने आहाब और इजेबेल की पुत्री से विवाह किया था। उसने बुराइयां सीखी और मेरे विचार में वह एक सुयोग्य शिष्य था। किसका? आहाब और इजेबेल का। दूसरे इतिहास के पुस्तक 21 अध्याय उसके 2-4 पद में हम पढ़ते हैं, इसके भाई जो यहोशापात के पुत्र थे ये थे, अर्थात अजरयाह, यहियेल, जकरयाह, अजरयाह, मिकाएल और सपत्याह। ये सब इसराइल के राजा यहोशापात के पुत्र थे और उनके पिता ने उन्हें चांदी, सोना और अनमोल वस्तुएं और बड़े बड़े दान और यहूदा के गढ़ वाले नगर दिए थे, परंतु यहोराम को उसने राज्य दे दिया, क्योंकि वह जेठा था। जब यहोराम अपने पिता के राज्य पर नियुक्त हुआ और बलवंत भी हो गया, तब उसने अपने सब भाइयों को और इसराइल के कुछ हाकिमों को भी तलवार से घात किया। मेरे मित्रों, उसने संपूर्ण कायरता से अपने प्रतिद्वंदियों को, अपने भाइयों और राजसी सदस्यों को भी निरसंस हत्या की। उसने ऐसा क्यों किया? दूसरे इतिहास के पुस्तक 21 अध्याय के 6 पद में हम पढ़ते हैं, वह इसराइल के राजाओं की सी चाल चला जैसे आहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी पत्नी आहाब की बेटी थी और वह उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। अब ध्यान दीजिए, परमेश्वर अंतर जातीय विवाह का अनुमोदन नहीं करता है। मेरे मित्रों, आप यहाँ पर इसके परिणाम को देख सकते हैं। दूसरे इतिहास के पुस्तक 21 अध्याय के 7 पद में लिखा है, तो भी यहोवा ने दाऊद के घराने को नाश करना न चाहा, यह उस वाचा के कारण था जो उसने दाऊद से बांधी थी और उस वचन के अनुसार था जो उसने उसको दिया था कि मैं ऐसा करूंगा कि तेरा और तेरे वंश का दीपक कभी ना बुझेगा। वह ऐसा दुष्ट था कि परमेश्वर यदि उसके वंश का ही सर्वनाश कर देता तो न्यायोचित ठहरता, परंतु देखिए परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा से नहीं टलता है। वह दाऊद के वंश को नष्ट नहीं करेगा क्योंकि उसने दाऊद से वाचा बांधी थी। मेरे प्रियो, अब हम देखेंगे कि उसे तुरंत दंड मिलना आरंभ होता है। दूसरे इतिहास की पुस्तक 21 अध्याय उसके 8 से 10 पद में हम पढ़ते हैं, उसके दिनों में एदोम ने यहूदा की अधीनता छोड़कर अपने ऊपर एक राजा बना लिया। सो यहोराम अपने हाकिमों और अपने सब रथों को साथ लेकर उधर गया और रथों के प्रधानों को मारा। यूं एदोम यहूदा के वश से छूट गया और आज तक वैसा ही है। उसी समय लिब्ना ने भी उसकी अधीनता छोड़ दी। यह इस कारण हुआ कि उसने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था। मेरे प्रिय श्रोताओं, परमेश्वर स्पष्ट करता है कि यहोराम को दंड क्यों मिला। धर्मशास्त्र में लिखा है कि उसका दंड परमेश्वर की ओर से था, उसे शांति नहीं थी क्योंकि उसने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था। मेरे मित्रों, मैं उन लोगों के साथ कुछ अधीर हो उठता हूँ जो कहते हैं कि पाप का दंड नहीं है। उनके कहने का अर्थ यह है कि वे बाइबल में विश्वास नहीं करते। यदि वे ऐसा कहते हैं तो मैं उनका दोष नहीं देखता, उनका विश्वास उनका अपना है। परंतु जब वे मुझे सिखाते हैं कि बाइबल परमेश्वर के दंड की चर्चा नहीं करती जबकि यह स्पष्ट है, तब मैं आपत्ति प्रकट करता हूँ। परमेश्वर कहता है कि वह पाप का दंड देता है और हम में से अधिकांश अपने अपने जीवन में इसकी गवाही दे सकते हैं। मित्रों, हम आगे पढ़ते हैं दूसरे इतिहास की पुस्तक 21 अध्याय उसके 11 पद में, और उसने यहूदा के पहाड़ों पर ऊंचे स्थान बनाए और यरूशलेम के निवासियों से व्यभिचार कराया और यहूदा को बहका दिया। मेरे प्रिय मित्रों, उसने प्रजा को मूर्ति पूजा में गिरा दिया जिसमें से उसके पिता ने उन्हें लोगों को और अपनी प्रजा को उभारा था। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम एक बहुत ही विचित्र बात देखते हैं कि पिता परमेश्वर की निकटता में आया और जबकि पुत्र को भी उसी मार्ग पर चलना था लेकिन वह उस मार्ग पर नहीं चला क्योंकि उसकी पत्नी और उसके सास ससुर अन्य जाति में से थे, अर्थात वे मूर्ति पूजक थे। इसीलिए पौलुस कहता है कि असमान जुए में मत जुतो। कहने का तात्पर्य है कि अविश्वासी के साथ आप विवाह न करें। मेरे जवान भाई बहन, आज अपने जीवन में आप भी निर्णय लें, क्या आप परमेश्वर के निकटता में बने रहना चाहते हैं या आप परमेश्वर से दूर होना चाहते हैं। मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414, और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मन।